लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। 16 जनवरी गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति व संभावनाएं रिपोर्ट जारी किया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में लंबे समय से व्यापार विवादों के प्रभावों के कारण पिछले एक दशक में सबसे कम वृद्धि हुई और ये 2019 में 2.3% दर्ज की गई। हालांकि रिपोर्ट कहती है कि अगर जोखिमों को एक तरफ रख दिया जाए तो 2020 में दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में 2.5% की वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन व्यापारिक तनाव, वित्तीय उथल पुथल या राजनीतिक तनावों में बढ़ोतरी से प्रगति पटरी से उतर भी सकती है। जलवायु संकट, लगातार बढ़ती असमानताएं और खाद्य असुरक्षा व अल्प पोषण के बढ़ते स्तर से अनेक समाजों में जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय या निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना होगा। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
जलवायु संकट, दुनिया भर में लगातार जारी गंभीर विषमताएं, खाद्य असुरक्षा के बढ़ते स्तर और कुपोषण जैसी स्थितियां बहुत से समाजों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं, जिनके कारण असंतोष भी बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति व संभावनाओं पर वर्ष 2020 की रिपोर्ट में ये आकलन पेश किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय या निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना होगा। इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समायोजन की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 3/4 हिस्से के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण एशिया और भारत में इन आर्थिक संभावनाओं के बारे में दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर नागेश कुमार के साथ खास बातचीत की।
जो वेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है, क्या प्रमुख इसमें बातें कही गई?
वेस्ट रिपोर्ट में 2019 के वर्ष का आर्थिक विश्लेषण हुआ है और वो निकल के जो आता है उसके एक मेन हाईलाइट के 2019 का वर्ष जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए काफी खराब वर्ष रहा। इसमें जो आर्थिक विकास की दर है वो 2.3% पे पूरे एक दशक में सबसे कम रही, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये सबसे खराब विकास की दर रही। और उसका कारण जो है ये कि ट्रेड वॉर्स की वजह से उसमें काफी उथल पुथल और एक अनसर्टेनिटी का माहौल अर्थव्यवस्था में रहा। उसका असर सारे देशों पर पड़ा, लेकिन इस रिपोर्ट में एक आशा व्यक्त की गई है कि अब आने वाला वर्ष जो है 2020-21 का, उसमें विश्व अर्थव्यवस्था में भी एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट या सुधार की संकेत मिलेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी यही विश्लेषण दिखाया गया है कि अभी आर्थिक विकास की दर जो 5% पे नीचे चली गई थी वो अब धीरे धीरे उभरनी शुरू होगी। अगले साल में हम समझते हैं कि 5.8 या 9 या 6% तक ये विकास की दर हो सकती है। ये अगर एक विकास का ट्रेंड शुरू होता है तो उससे कई सारी चीजें, जैसे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और भारत में अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं होंगे तो विश्व के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा उनको अचीव करना, तो उसको भी एक मदद मिलेगी। अगर विकास की दर बढ़ती है तो उससे नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, उससे जो गरीबी की दर है उसको गिराने में, उसको एलिमिनेट करने में आसानी होती है।
तो आपने भारत की बात की, अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें पूरे की, तो बाकी देश और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या आगे उम्मीद करें?
दक्षिण एशिया में भारत के जो नेबरिंग या पड़ोसी मुल्क हैं उसमें देखें तो बांग्लादेश एक इकोनॉमी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और पिछले वर्ष में जिस वर्ष में सारे दुनिया के देशों में मंदी या विकास की दर गिरने का ट्रेंड था, उस साल में भी बांग्लादेश ने 8% से ऊपर की ग्रोथ दिखाई। और उसका कारण यह है कि बांग्लादेश में एक स्थायी सरकार है और वह अच्छी नीतियों का पालन कर रही है, और वहां पर एक ये जो रेडीमेड गारमेंट्स में उन्होंने बड़ी महारत हासिल की है, और जो चीन और अमेरिका के बीच में जो व्यापार का युद्ध जो चल रहा है एक तरह से, तो उसका फायदा वो उठा पाए, क्योंकि बहुत सारे जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो जो चाइना से एक्सपोर्ट करते थे अब वो अपना रिलोकेट कर रहे हैं वियतनाम में या बांग्लादेश में, दूसरे ऐसे ही। बांग्लादेश ने उसका फायदा उठाया और उससे उनकी विकास की दर और तेज हुई है, और आशा है कि ये आने वाले वर्षों में भी बांग्लादेश ऐसे ही प्रगति करता रहेगा। साथ में दूसरे देश हैं, उसमें भूटान ने भी अच्छी विकास की दर रिपोर्ट की है 6% से ऊपर। वो क्लियर थिंक किंग वाली पॉलिसी है कि अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो प्राकृतिक संपदा है उनकी है, उसको हार्नेस करें, और उसमें हाइड्रो पावर वो उसको उसमें निवेश कर रहे हैं भारत के साथ मिलके, और अब बांग्लादेश और नेपाल भी उस दिशा में जा रहे हैं। बांग्लादेश भी भूटान से ये हाइड्रो पावर को इम्पोर्ट करना चाहता है।
लीबिया में अनेक वर्षों से गृह युद्ध, जनरल खलीफा हफ्तार के नेतृत्व वाली लीबियन नेशनल आर्मी और प्रधानमंत्री फैज अल सिराज की अगुवाई में नेशनल एकार्ड के बीच लड़ाई चल रही है। लीबिया की गंभीर स्थिति का कोई समाधान तलाश करने की कोशिशों के तहत जर्मनी ने राजधानी बर्लिन में रविवार 19 जनवरी को एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें शिरकत करने वाले प्रतिद्वंदी पक्षों के नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान, ब्रिटेन से बोरिस जॉनसन और यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस भी मौजूद थे। सम्मेलन में अंतोनियो गुटेरेस ने कहा, लीबिया युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की अनदेखी की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जल्दी कोई हल नहीं निकाला गया तो गृह युद्ध पूरे देश में फैल सकता है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
अप्रैल 2019 में राजधानी त्रिपोली के बाहरी इलाकों और पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाई फिर से भड़कने के बाद हजारों बच्चों व आम लोगों के लिए परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हैं। विशेष रूप में घनी आबादी वाले इलाकों पर अंधाधुंध हमले होने के कारण सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने कहा कि यूनिसेफ को ऐसी खबरें मिली हैं कि बहुत से बच्चे अपंग हो गए हैं, बहुत से बच्चों की मौत हो गई और बहुत से बच्चों को लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए भर्ती किया गया है। वर्ष 2011 में तत्कालीन शासक मुअम्मार गद्दाफी के सत्ता से हट जाने के बाद से ही लीबिया में गहरी अस्थिरता रही है और अर्थव्यवस्था तो लगभग ठप ही हो गई है। हालांकि देश के पास तेल के विशाल भंडार हैं। खलीफा हफ्तार के नेतृत्व वाली स्वयंभू लीबियन नेशनल आर्मी एलएनए के कुछ गुटों और त्रिपोली सरकार के बीच लड़ाई में हजारों लोगों की मौत हुई है। लीबियन नेशनल आर्मी विशेष रूप से देश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय है, जबकि पश्चिमी हिस्से में स्थित त्रिपोली सरकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश लीबिया की स्थिति पर जर्मनी में रविवार को होने वाले एक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त लीबिया सरकार के प्रधानमंत्री फैयाज अल सराज व लीबियन नेशनल आर्मी के नेता खलीफा हफ्तार के भी शिरकत करने की संभावना है। इस सम्मेलन में लीबिया में एक स्थायी युद्ध विराम पर सहमति होने की उम्मीद जताई गई है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे महबूब खान। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
सदा शांति दे दे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे ज्योति दाता, सदा शांति दे दे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे ज्योति दाता, हे ज्योति दाता। शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, हे ज्योति दाता।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व के समस्त पत्रकारों, संपादकों और लेखकों से अपील की है कि वे मिथ्या और विनाशकारी कहानियों का बहिष्कार करें तथा उन भली बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। 24 जनवरी को पत्रकारों और लेखकों के संरक्षक संत फ्रांसिस द सेल्स के पर्व के उपलक्ष्य में सामाजिक संप्रेषण दिवस मनाया जाता है। 54वें सामाजिक संप्रेषण माध्यम संबंधी दिवस के उपलक्ष्य में जारी संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने वृत्तांत सुनाने पर ध्यान आकर्षित कराते हुए संप्रेषण माध्यम जगत से जुड़े लोगों और विशेष रूप से कैथलिक संप्रेषकों से अनुरोध किया है कि वे विनाशकारी कहानियों के प्रलोभन में न पड़ें। संत पापा ने कहा, कहानियां और वृत्तांत हम कौन हैं ये समझने में हमारी मदद कर सकती हैं, इसलिए कि मनुष्य एक कहानीकार है। बाल्यकाल से ही हम कहानियों के भूखे रहते हैं। कहानियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, चाहे वे परियों की कहानियां हो, उपन्यास हो, फिल्म हो, गीत अथवा समाचार ही क्यों न हो, वे हमारे जीवन को गहनतम ढंग से प्रभावित करती हैं और इन्हीं के आधार पर हम भले बुरे का निर्णय लेते हैं। संप्रेषण माध्यम का उपयोग सदैव समाज में भलाई के प्रसार के लिए करने का आह्वान करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने स्मरण दिलाया कि प्रसारण यथार्थ तब होता है जब वह मानव उत्थान की ओर ले जाता है। यदि वह विनाश की ओर ले जाता है तो वह प्रसारण नहीं होता। उन्होंने कहा कि यदि हमारी कहानी सत्य की खोज का लक्ष्य रखती हुई विनम्रता पूर्वक रची गई है तो वह मानव उत्थान और सामाजिक विकास में योगदान देगी। उन्होंने कहा, अच्छी कहानियों के सत्य की सांस लेने की नितांत आवश्यकता है। संत पापा ने कहा, पवित्र धर्मग्रंथ कहानियों की कहानी है। बाइबल धर्मग्रंथ हमें बताता है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर सर्वज्ञ कथावाचक हैं। अपने कथन के माध्यम से ईश्वर चीजों में प्राण फूंकते और इसके चरमोत्कर्ष पर पुरुष और महिला की सृष्टि कर उन्हें अपने मुक्त वार्ताकारों के रूप में प्रेषित करते हैं। अस्तु, संत पापा ने कहा, ईश्वर के वार्ताकारों का दायित्व है कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर और मानव जाति के मध्य विद्यमान प्रेम की कहानी का प्रसार करें। मीडिया कर्मियों से संत पापा ने आग्रह किया कि वे मिथ्या कहानियों, अफवाहों और कथित फेक न्यूज के प्रलोभन में कदापि न पड़ें। संत पापा लिखते हैं, हमारे वृत्तांतों में निहित हिंसा और झूठी बकवाद, तुच्छ और झूठ से भरे हमारे भाषण, घृणा को उकसाने वाले हमारे शब्द विनाश की ओर ले जाते हैं, इसलिए कि यह मानव प्रतिष्ठा पर कुठाराघात करते हैं। उन्होंने अपील की कि अपने लेखन कार्यों तथा कथा वाचन में मीडिया कर्मी इन प्रलोभनों से बचें तथा सत्य के प्रकाश में अपने कार्यों का संपादन कर शांति और न्याय पर आधारित कहानियों के निर्माण में योगदान प्रदान करें। संत पापा फ्रांसिस ने 24 जनवरी के ट्वीट संदेश में संत फ्रांसिस द सेल्स के पर्व पर मनाए जाने वाले संप्रेषण माध्यम दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित अपने संदेश पर ध्यान आकर्षित कराया है, जिसमें उन्होंने हिंसा और घृणा को प्रश्रय देने वाली भाषा के बहिष्कार का आग्रह किया है। शुक्रवार 24 जनवरी के ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, खो न जाने के लिए हमें उन अच्छी कहानियों के सत्य की सांस लेने की जरूरत है जो निर्माण करती हैं, ऐसी कहानियों की जो हमें हमारी जड़ों की पुनर्खोज में मदद करती तथा एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार 23 जनवरी को धन्य घोषणा के लिए परम धर्म पीठीय संत प्रकरण परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल आंजलो बेचू द्वारा प्रस्तुत आज्ञप्तियों को स्वीकार कर 12 शहीदों और प्रभु सेवकों की धन्य और संत घोषणा को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। धन्य घोषित किए जाने वाले शहीदों का परिचय इस प्रकार है। स्पेन में अपने विश्वास के खातिर सन 1936 में मारे गए कैपुचिन धर्म समाजी बेनेडिक्ट दी सांता कोलोमा दे ग्रेमेनेट तथा उनके दो साथी, ग्वाटेमाला में सन 1980 और 1991 के दौरान विश्वास के खातिर मारे गए येसु के पवित्र हृदय को समर्पित धर्म समाज के जुसेप्पे मरिया ग्रान चिरका, उनके दो साथी पुरोहित और 7 लोक धर्मी कार्यकर्ता। इनके अतिरिक्त इटली के फेरारा में 15वीं शताब्दी के धर्माध्यक्ष धन्य जोवानी तावेली, स्पेन में मरियम के हृदय को समर्पित धर्म समाज के संस्थापक 19वीं शताब्दी के पुरोहित जोआकिनो मस्मिता ई पुई, मेक्सिको में ग्वादालुपे की मरियम को समर्पित धर्म संघ के संस्थापक 19वीं शताब्दी के पुरोहित फादर जोसेफ अंतोनियो प्लानकार्ते, स्पेन के बिलबाओ में सन 1967 तक सेवारत धर्म प्रांतीय पुरोहित जुजेप्पे पियो कास्तु आरिनसे, फ्रांस के कैपुचिन धर्म समाजी अंतोनियो मरिया द लावोर तथा ब्राजील की कार्मेल मठवासी धर्म बहन कार्मेन कतरीना बीनो के वीरोचित गुणों को स्वीकार कर संत पापा फ्रांसिस ने इनकी धन्य और संत घोषणा को भी अनुमोदन दे दिया है। बेल्जियम में विगत दिनों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो गणतंत्र के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के एक शिष्टमंडल ने यूरोपीय संघ के उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर देश के पूर्वी हिस्से में सुरक्षा कायम करने हेतु मदद की अपील की। धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष मार्सेल उतेम्बी ने वैटिकन न्यूज को बताया कि उन्होंने यूरोपीय संघ के उच्चाधिकारियों से बातचीत कर उनसे विस्थापितों और हिंसा के शिकार बने परिवारों के लिए मानवतावादी और लोकोपकारी सेवाओं की अपील की है। इसके अतिरिक्त सशस्त्र समूहों के निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में समर्थन और वार्ताओं एवं सुलह के माध्यम से शांति और पुनर्मिलन की स्थापना में सहायता का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र के धर्माध्यक्षों ने यूरोपीय संघ से कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही देश की निर्धन जनता के विकास के लिए यूरोपीय संघ की एक विशिष्ट संस्था की रचना का भी आग्रह किया है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।